پھر اس قرآن کی حقانیت کی اور بات اور اس کی فضیلت کی بات، یا ایہ الناس اے لوگو، ساری انسانیت، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، ایسے نہیں لگ رہا کوئی اعلان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ندا دی ہے پوری انسانیت کو کہ تمہارے پاس موعظہ بھی آ گیا. موعظہ میں نے آپ کو بتایا، بعض ایسی نصیحت جو بھلائی کی نصیحت ہے، جو خیر خواہی کی نصیحت ہے، وہ تمہارے پاس آ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی ہے کہ تمہارے لیے یہ نصیحت بھیجی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. رب کون؟ جو تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا پالنہار، اس نے تمہاری طرف ایک نصیحت بھیجی ہے. وَشِفَاعٌ، اور شفا ہے اس کے اندر کس کی؟ لِمَا فِي الصُّدُور، جو سینوں میں ہے، یہ اس کی شفا ہے، بیماریوں کو دور کرنے کا علاج ہے، اس میں صحت ہے. تو اس کے اندر کس چیز کی شفا ہے؟ ویسے یہ قرآن اور جگہوں پہ بھی آیا کہ ہدم و شفا. تو یہ نہ صرف ایک ہی انسان کی روحانی بیماریوں کی شفا ہے، بلکہ جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے. ہر قسم کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے یہ قرآن ہے. اور یہ روحانی بیماریاں تو میں نے آپ کو بتائیں کہ کفر، نفاق، شک کی بیماری، غفلت ایک بیماری ہے، حسد ایک بیماری ہے، یہ دل کے امراض ہیں نا، دل کی بیماریاں، تو ان کا علاج قرآن میں ہے. اسی طرح دنیا کی محبت ایک بیماری ہے، اس کا بھی علاج قرآن میں ہے. یہ نکال دیتا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں نا، پتہ نہیں وہ لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں کیا بتائیں گے، ہمیں تو سب پہلے ہی پتا ہے. یعنی اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں قرآن ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ بھئی یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو. ٹھیک ہے، احکامات بھی ہیں، عوامر و نواہی بھی اس قرآن میں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ہیں، لیکن بس یہ ایک ایسی لسٹ نہیں دے دی گئی کہ 1 سے 50 تک ایک لسٹ دے دی گئی، ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس. نہیں، یہ تو موعظہ ہے، یہ تو شفا ہے. اس چیز کو نہیں سوچتے، وہ بیچارے یہی سمجھتے رہتے پتہ نہیں کوئی انفارمیشن ہم تک پہنچانی ہے، انہوں نے کچھ بتانا ہے کہ نماز ایسے پڑھا کرو، یا نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، یہ انہوں نے ہمیں بتانا ہے. تو بیچاروں نے کبھی قرآن پڑھاؤ تو سمجھ آئے نا کہ یہ بس حکم دے رہا ہے کسی چیز کا یا اس سے منع کر رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے. یہ تو شفا ہے جو صدور میں ہے. اور شفا کس کو نہیں چاہیے؟ کیونکہ کہیں بغض ہیں، کہیں کینے ہیں، کہیں عداوتیں ہیں، کہیں شرک کی بیماری لگ گئی، کہیں ریاکاری کی بیماری لگ گئی، تو ان بیماریوں کے، یہ سینے کی بیماریاں، ان میں شفا کا کام دیتا ہے. اللہ اکبر. اور ہمیں کہیں پتہ چل جائے کہ کہیں کوئی ڈاکٹر ہے جس کے جہاں سے ہمیں شفا مل سکتی ہے، تو ہم بھاگتے جاتے ہیں، کتنی فیسیں بھی دے کے ہم اس کے پاس جا کے اور اس سے علاج کرواتے ہیں. اور یہ دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شفا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ شفا ہے ان قلبی امراض کی. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف روحانی امراض کی شفا نہیں ہے، بلکہ اور بھی جو جسمانی امراض ہیں ان کی بھی شفا اس قرآن میں ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، کوئی ساری مثالیں آپ کو ملتی ہیں، زہریلے جانور کا کاٹنا، اس کا علاج اسی میں، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے کاٹنے پہ اس جگہ پہ نمک لگا کے اس جگہ پہ، اور نمک ملے پانی سے دھویا تھا، اور سورہ کافرون اور معوذ تین پڑھ کے دم کیا تھا. پھر جنون کا، مرگی کا جو ان کو دورہ پڑتا ہے، سایہ جو ان کو کہہ دیتے ہیں وہ جاتا ہے، تو 3-3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا. پھر باقی بھی تمام بیماریوں میں سورہ فاتحہ کا دم بکثرت کرنا چاہیے. اس کا نام ہی، سورت کا نام ہی شفا ہے، تو یہ قرآن کا ہی حصہ ہے نا. سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیتیں ہیں، یہ بھی دم کے لیے، بہت کارآمد ہے دم کے لیے. صبح شام 3-3 دفعہ سورہ اخلاص، موعظتین پڑھ کے دم کرنا، یہ تو پتہ ہی ہوگا آپ کو. پھر جانکنی کی جو تکلیف ہے، اس کے اندر بھی یہ صورتیں کام آتی ہیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ پڑھ پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اور آپ کے جسم پہ پھیرتی تھی،
कि नजरे बद से बचने का भी इलाज इसी के अंदर है, अरे शैतानी जो वसवास है उनसे भी बचने का इलाज इसके अंदर है, यही कुरान ही है उनका इलाज, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई ही है कि कौन कौन सी सूरतें कहाँ कहाँ से पढ़ी जाए। इसी तरह जादू वगैरह से, फिर आप बुरा ख्वाब देखते हैं तो फिर आप 3 दफा बाएं तरफ थूकें और फिर रब्बी आऊज़ बिका मिन हमज़ाती शयातीन व आऊज़ बिका रब्बी अन यहज़ुरून या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, तो ये वो जो पहले मैंने बताया सूरह मोमिनून की आयतें। तो इस तरह से इसके अंदर मतलब आपके लिए जितनी भी बीमारियां प्रॉब्लम्स उनके लिए शिफा है, और पूरा कुरान ही है शिफा। ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे सिर्फ ये आयत है या ये है, और इसके अलावा ये जो बीमारी है ना, ये जो एंग्जाइटी डिप्रेशन बेकरारी कहते हैं कि मुझे बहुत अंदर से मैं बेकरार हूँ, जहनी परेशानियां, उनके लिए लोग बाज लोग म्यूजिक की तरफ जाते हैं, बाज लोग कोई गोलियां खाने शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये सकून कल्ब वो नेमत है जो अल्लाह ताला सिर्फ सकीनत आसमान से ही नाजिल होती और अल्लाह ही नाजिल कर सकता है दिलों के अंदर, और इसके लिए भी कुरान है। जितना आप कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करते हैं ना, गहरा करते हैं, उतना ही आपके दिल को और जहन को सुकून मिलता है गैर महसूस तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो और क्या है, वह हुदा व रहमा, और गाइडेंस है, ये आपको गाइड करता है जिंदगी के प्रॉब्लम्स में भी गाइडेंस इससे मिलती है, और आखरत के लिए रास्ता जन्नत का रास्ता तो ये बताता ही है। मैंने आप उस दिन क्या कहा था कि कुरान पढ़ के हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर का रास्ता जान रहे हैं, हमारा घर जन्नत है और ये जन्नत का रास्ता बताता है। तो दुनिया की गुमराहियों में भी हिदायत आपको यहीं से मिलेगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा नहीं ये कहाँ गलत लिखा हुआ है, कोई कहेगा ये कहाँ वो ऐसे लिखा है, कोई कहेगा कुछ नहीं होता इसको करने से। तो इन सारे जो भी फलसफे जो भी बातें भांत भांत की बोलियां लोग बोल रहे हैं, ये ऐसे है जैसे एक जंगल में आप रहते हैं जिसमें आप ये जितना सोशल मीडिया अब ज्यादा जाहिर है इसके ऊपर लोगों का वक्त ज्यादा गुजरता है, तो आप देखेंगे हर तरफ से बोलियां, आप उसके अंदर से किस तरफ जाएं और किस तरफ ना जाएं। तो ये कुरान है जो हिदायत देता है, कुरान है जो राह बताएगा कौन सा रास्ता सीधा है। आप देखें ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान है अल्लाह की रस्सी जिसका एक सिरा अल्लाह के पास है और एक सिरा इंसान, दूसरा सिरा इंसान के हाथ में। तो इसको मजबूती से थामे रखोगे तो हलाक नहीं होगे और गुमराह नहीं होगे, लेकिन जो लोग इसको छोड़ दें तो फिर उसके बाद हलाकत है, क्योंकि अगर इससे रास्ता नहीं लिया ना आपने तो आगे तबाही है। फिर ये रास्ता दिखाता है आपको, इसका सिरा हाथ से जाने नहीं देना। तो फितनों से भी हिफाजत, आप देखें सूरह कहफ की आप आयतें पढ़ते हैं, फितना दज्जाल जो सबसे बड़ा फितना है वो उससे महफूज रहेंगे, जो इतने बड़े फितने से महफूज रखे तो छोटे छोटे फितने से तो जरूरी आप महफूज रहेंगे। फिर ये इतनी जबरदस्त आयतें हैं, ये फिर आसमानी आफतों से भी महफूज रखती है। तो जैसे आता है ना कि हज़रत उकबा फरमाते हैं कि हम लोग आपसे शर्म के साथ सफर में थे कि अचानक हमें जबरदस्त तारीकी छा गई हमारे ऊपर और आंधी आने लगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की पनाह मांगनी शुरू करो और मौज़तैन के जरिए अल्लाह की पनाह मांगो, और किसी पनाह मांगने वाले के लिए इन दो सूरतों से बेहतर कोई सूरत नहीं पनाह लेने के लिए ना। इसी तरह रिज़्क़ की फरावानी के लिए भी कुरान है नुस्खा, रात के फितनों और खतरात से बचने के लिए भी कुरान नुस्खा है। सूरह बकरा की आखिरी जो दो आयात है वो हर तकलीफ खतरे से बचने के लिए काफी है। फिर हाजतें पूरी होने के लिए भी कुरान नुस्खा है। फिर खैर और बरकत के हसूल के लिए भी रमाया के सूरह बकरा पढ़ा करो, इसका छोड़ना हसरत है, इसका पढ़ना बरकत है। फिर आप वैसे भी शयातीन से जो घरों में घुस जाते हैं और उसके बाद घरों में फसाद लड़ाइयाँ, और आप देख रहे हैं घरों में कोई किसी के साथ देख बैठना नहीं चाहता, अल्लाह की नाफरमानियाँ, वो क्यों होती हैं, शयातीन दाखिल हो जाते हैं, तो शयातीन से इनसे बचने के लिए भी। और फिर क्या हमने यहाँ की सिर्फ बात करनी है, बरजख की जो एक जिंदगी है बरजख की, इसके बाद कौन सी ऐसी चीज है जो आपके साथ चली जाए, कौन सी ऐसी चीज है, आपके घर नहीं जाने, आपकी गाड़ियां नहीं जानी, आपके डिग्रियां नहीं जानी, आपकी जॉबें नहीं जानी, आपके बच्चे नहीं जाने, आपके कोई भी नहीं जाएगा, पर ये कुरान है जो वहां पे भी हेल्प करेगा कि जिस वक्त मुनकर नकीर आके पूछेंगे कब्र में और उठा के बिठाएंगे, मर रब्बू का मन नबीयू का मां दीनू का, इंसान के जवाब देगा ना तो वो कहेंगे अमा यदरी का, तुझे कैसे पता इनके जवाब, तो कहता है कि मैं अल्लाह की किताब पढ़ता था, उसमें ईमान लाया था, उसकी तस्दीक की थी, मसद अहमद की अबू दाऊद की ये रिवायत है। तो कब्र में सवालों के जवाबों में कामयाबी सिर्फ उसको मिलेगी जो कुरान पाक के साथ अपना ताल्लुक रखे हुए थे, सिर्फ इस पे ईमान ही नहीं लाता था, इसको पढ़ा, इसको समझा, इस पे अमल किया। फिर आखरत की जिंदगी में आप देखें जाएंगे वहां पे सिफारशी बन के खड़ा हो जाए, मगफरत के लिए सिफारिश करेगा। हज़रत सलम ने फरमाया कि आमद के दिन कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। ये अल बकरा और आले इमरान आ जाएंगी, ये दोनों सूरतें मगफरत के लिए झगड़ा करेंगी अल्लाह ताला से, ये अल्लाह इसको माफ कर दे। फिर ये इज्जतें दिलाएगा ये कुरान वहां पे अल्लाह ताला से कहेगा या अल्लाह इसको इज्जत का ताज पहना, या अल्लाह इसको इज्जत का लिबास दे। इसको फिर इज्जत का ताज पहनाया जाएगा, इज्जत का लिबास पहनाया जाएगा। फिर वो कुरान पाक खड़ा होकर कहेगा या अल्लाह इसे राजी हो जा, तो अल्लाह ताला को राजी करवाएगा ये कुरान, और क्या चाहिए। फिर बुलंद दर्जे दिलाएगा, कहा जाएगा पढ़ता जा चढ़ता जा, वालदेन तक की ये इज्जत करवाएगा, वालदेन की भी तकरीम होगी। तो देखिए ना कि इसकी तो ब्लेसिंग्स खत्म ही नहीं होती। हम सिर्फ ये समझते हैं बस हमारे घर में कोई परेशानी हो गई, लो चार लोगों को बुलाओ और बिठा के उनसे जो है ना कुरान खानी करा लो, तो यहीं पे हमारी टांग टूटती है। हमारे असल में बस मैं क्या कहूँ, हमारे मसले भी ये दुनिया ही, इसी के पीछे हम हलकान, इसी की फिक्रों में हम पड़े हुए हैं, इसी की हमें हर वक्त धुन लगी है, यहीं के मसले, यहीं की खुशियां, यहीं के गम, बस दुनिया 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 दुनिया। अब वहां पे यहीं दुनिया की कोई मसला हो जाए, हमें ये नहीं परवाह की कि तुम मेरे कब्र में चले जाना, वहां पे किसने मेरे लिए साथ जाना, ये कुरान मेरा साथी बनेगा, कुरान मेरे लिए रोशनी का सामान बनेगा, ये मेरे नूर बन जाएगा मेरी कब्र, इसकी परवाह नहीं, बस यहां पे सब हमारे मसले हल हो जाए। तो आगे के मसले कैसे हल करोगे। तो ये हुदम व रहमत लिल मुमिनीन है, देखें जो पहली दो चीजें हैं ना वो मुफस्सिरीन कहते हैं कि सब के लिए है, सब के लिए, लेकिन हुदम और रहमत सिर्फ मोमिनों के लिए।